ये का पुनः प्रमा यस्याः करणम प्रमाणम, इस तरह से प्रश्न उत्थान हुआ था ग्रंथ में कि प्रमा किसे कहते हैं और प्रमा का करण जो है वह प्रमाण होता है। तो पहले प्रमा का हमें पता होना चाहिए और तब हमें जो है ना पता लगेगा कि इसका करण प्रमाण क्या होता है। तो प्रमा का लक्षण इन्होंने किया था ग्रंथकार ने, यथार्थानुभव प्रमा, यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। यथार्थ माने वास्तविक, अनुभव माने ज्ञान, तो वास्तविक ज्ञान को प्रमा कहते हैं। अब इस लक्षण में इन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि अनुभव प्रमा, इन्होंने कहा यथार्थ अनुभव प्रमा। तो यथार्थ विशेषण जो अनुभव में लगाया गया है वो क्यों लगाया गया, इसके जवाब में कहा था कि यथार्थ इति अयथार्थानाम संशय विपर्यय तर्क ज्ञानानाम निराशः। अर्थात ज्ञान दो प्रकार का होता है, अनुभव दो प्रकार का होता है, एक यथार्थ अनुभव और दूसरा अयथार्थ अनुभव। यदि हम यथार्थानुभव प्रमा कहते हैं तो इसका लाभ ये होगा कि जितने अयथार्थ अनुभव हैं उनको प्रमा नहीं कहा जाएगा। तो प्रश्न आया कि अयथार्थ अनुभव कौन है, तो इन्होंने यहाँ गिना दिया संशय विपर्यय तर्क ज्ञानानाम निराशा। ये संशय जो है ये भी अयथार्थ अनुभव है, विपर्यय भी वैसा ही है और तर्क ज्ञान भी अयथार्थ अनुभव है। अगर सीधे हम अनुभव तो ये यथार्थ अनुभव हो या अयथार्थ अनुभव हो, अनुभव तो दोनों हैं। तो यदि अनुभव प्रमा कहेंगे तो दोनों टाइप का अनुभव जो है ना वह लक्षण के अंदर आ जाएगा। इसीलिए कहा कि यथार्थ का ग्रहण अनुभव लक्षण में इसलिए किया गया कि संशय विपर्यय और तर्क ज्ञान रूपी जो अयथार्थ अनुभव है उसको हम प्रमा नहीं कह सकें, ये प्रमा नहीं कहलावें, इसलिए यथार्थ विशेषण लक्षण में दिया गया। मैंने पूर्व पाठ में बताया हुआ है कि संशय किसे कहते हैं, विपर्यय किसे कहते हैं और तर्क ज्ञान किसे कहते हैं। संशय का उदाहरण बताया था अयम स्थानुर्वा पुरुषोवा, जब एक ही वस्तु में दो प्रकार का जो है विरोधी ज्ञान होने लगता है कि यह ये है कि यह ये है, तो उस ज्ञान का नाम संशय होता है। संशय माने संदेह। दूसरा विपर्यय होता है जिसको जिसे हम विपरीत ज्ञान कहते हैं, जिसका उदाहरण बताया था कि सीपी को जो है ना संस्कृत में शुक्ति कहते हैं, तो यम शुक्ति ही वह शुक्ति है लेकिन वो दूर से देखने पर जो है ना सूर्य की रोशनी में चमकदार दिखती रहती है, तो जैसे लगता है कि ये चांदी है। तो यम शुक्ति ही इस ज्ञान में जो इदम रजतम का ज्ञान होता है, रजतम माने चांदी, वह विपर्यय ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, कुछ और ज्ञान होता है कुछ। और तीसरा हमने तर्क ज्ञान को बताया था कि वो भी जो है अयथार्थ अनुभव के अंतर्गत आता है। तर्क ज्ञान में हमने उदाहरण दिया था कि धूमो यदि बहनी व्यभिचारी स्यात् बहनी जन्यो न स्यात्। ये जो है तर्क है, इस तर्क ज्ञान से जो है ना निश्चयात्मक ज्ञान होता है कि धूम जो है चूंकि बहनी से जन्य होता है इसलिए वह बहनी का सहचारी है, व्यभिचारी नहीं है। ये व्यभिचारी होता है जिस जो व्यभिचारी ज्ञान होता है अभावात्मक ज्ञान, और सहचारी होता है भावात्मक ज्ञान। खैर तो ये सब चर्चा पहले हो चुकी है, उसी क्रम में हमने लिखाया था कि व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्क, कि व्याप्य के आरोप से जो व्यापक का आरोप होता है उसे ही तर्क कहा जाता है। तो धूमो यदि बहनी व्यभिचारी स्यात्, ये जो एक पार्ट है तर्क ज्ञान का, इसमें जो है ना व्याप्य का आरोप है, और दूसरा जो पार्ट है बहनी जन्यो न स्यात्, इसमें व्यापक का आरोप है, और ये भी जो है ना अयथार्थ अनुभव के अंतर्गत आता है। तो अभी तक की बात जो मैंने की है आज वो तो पूर्व पाठ के संदर्भ में की है ताकि थोड़ा ताज़ा हो जाए। अब आगे का पाठ जो है ना नया पाठ शुरू कर रहे हैं, इसमें कहा कि ठीक है आपने यथार्थानुभव प्रमा कहा, माने यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं, वास्तविक ज्ञान को प्रमा कहते हैं। तो इसमें यथार्थ का विशेषण क्यों लगाया, उसका तो आपने जवाब दे दिया कि अयथार्थ को हम प्रमा न कहें, इसलिए यथार्थानुभव कहा। लेकिन सीधे इतना ही करिए कि यथार्थ प्रमा माने जो वास्तविक है उसको प्रमा कहते हैं, इसमें अनुभव कहने की क्या जरूरत है। तो कहा कि ऐसा है कि दो चीजें होती हैं यथार्थ, एक अनुभव और एक स्मृति। यदि हम अनुभव नहीं कहेंगे, सीधे कहेंगे कि यथार्थ प्रमा, तो अनुभव को भी प्रमा कहा जाएगा और स्मृति को भी प्रमा कहा जाएगा। अगर हम यथार्थ अनुभव प्रमा कहते हैं तो केवल अनुभव को ही प्रमा कहा जाएगा, स्मृति का निराश हो जाएगा। स्मृति का निराश होना माने अलग, निराश कहते हैं अलग कर देना। तो प्रमा के लक्षण में से स्मृति को अलग करने के लिए लक्षण में अनुभव शब्द का प्रयोग किया गया। तो वही कहते हैं ग्रंथकार कि अनुभव इति स्मृतेर निराश, अनुभव इसलिए लक्षण में बताया गया ताकि स्मृति का निराश हो, माने स्मृति को प्रमा न कहा जाए। तो अब प्रश्न आया फिर कि ये स्मृति कहते किसे हैं, तो ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही, ऐसा ज्ञान जिसका विषय ज्ञात हो, पहले से ज्ञात हो, पहले से मालूम हो, तो ऐसे ज्ञान को स्मृति कहते हैं। जिसको आप कहते हैं ना याद आना, स्मरण आना, तो वही जो स्मरण आना है ना, उसी को ना का नाम है स्मृति। तो स्मरण किसका होता है, जो पहले से आपको पता होता है उसी का स्मरण होता है। मान लीजिए आपने तर्क भाषा का कोई लक्षण जो है याद किया और मैंने पूछा कि इसका लक्षण बताओ, जैसे मान लो प्रमा का ही लक्षण अभी है, तो आपने प्रमा का लक्षण याद किया हुआ है यथार्थानुभव प्रमा। फिर मैं कुछ दिन के बाद आपको पूछता हूँ कि बेटा बताओ प्रमा का लक्षण क्या है, तो आप कहोगे ना यथार्थानुभव प्रमा। ये क्या करोगे आप, पहले से जो आपको ज्ञात है लक्षण उसका ज्ञान जो है ना आप करके मुझको आप सुनाओगे यथार्थानुभव प्रमा। ये जो आपका पहले का ज्ञान का जो अभी जो आप ज्ञान कर रहे हो, इसी ज्ञान का नाम है स्मृति। इसलिए कहा ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही, माने जिस ज्ञान का विषय ज्ञात हो, ज्ञात में अक्त प्रत्यय है जो भूत अर्थ में होता है, भूतकाल अर्थ में, तो भूत काल में जिसका विषय ज्ञात होता है वह ज्ञान स्मृति कहलाता है। एक चीज और आप समझ लीजिए, ये ज्ञान और विषय को समझिए कि ये क्या होता है। ऐसा है ना कि कोई भी ज्ञान जो होता है ना वो बिना विषय का नहीं होता, विषय का ही ज्ञान होता है। अगर विषय न हो ना तो कोई ज्ञान होगा ही नहीं। अब कहेंगे कि ज्ञान का विषय होता कौन है, तो बड़ा आसान है, जिसका ज्ञान हो वह ज्ञान का विषय कहलाता है। जैसे घट का ज्ञान होगा तो ज्ञान का विषय घट कहलाएगा, माता का ज्ञान होगा तो ज्ञान का विषय माता कहलाएगी, गुरु का ज्ञान होगा तो ज्ञान का विषय गुरु कहलाएगा। तो कोई भी जो ज्ञान होगा वो किसी न किसी के बारे में ज्ञान होगा ना, तो जिसके बारे में ज्ञान होता है वही ज्ञान का विषय कहलाता है। क्लियर। और ज्ञान हमेशा सौ विषयक होता है, माने हमेशा विषय का ही ज्ञान होता है, विषय से रहित ज्ञान कभी नहीं होता। तो फिर से इस लक्षण को देखिए, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही, माने ज्ञान जिस ज्ञान का विषय पहले से ज्ञात हो उस ज्ञान को हम स्मृति कहते हैं। अगर एक लक्षण लिखना आप चाहें तो कापी कलम पर एक लक्षण लिख लीजिए स्मृति का, ये मतलब दूसरे ढंग का लक्षण है, ऐसे ये परीक्षा में पूछेगा तो ये लक्षण तो लिखना ही है, ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही। और एक और लक्षण आप लिख देंगे तो क्या होगा, ज्यादा अंक आपको मिल सकेंगे। तो लिखिए संस्कार मात्र जन्यम, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। फिर से बोलता हूँ, संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। अर्थ तो आसान है कि संस्कार मात्र से जो जन्य हो ज्ञान, जन्य माने उत्पन्न, तो जो केवल संस्कार से ही ज्ञान उत्पन्न हो उसको स्मृति कहते हैं। तो यहाँ एक मन में आएगा ना कि केवल संस्कार से, इसका मतलब है कि संस्कार के अलावे भी कुछ होता है जिससे कि ज्ञान उत्पन्न होता है, तो होता है ना, जैसे इंद्रिय हो गया तो इंद्रिय से भी जो है ना ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे नेत्रेंद्रिय से कुछ देखते हैं, चक्षु श्रोत्रेंद्रिय से कुछ सुनते हैं, तो वहाँ पर जो है ना इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान होता है। तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञान स्मृति, यानी केवल मात्र माने केवल सिर्फ, तो सिर्फ संस्कार से ही जो जन्य ज्ञान हो, उत्पन्न ज्ञान हो, उसको हम स्मृति कहते हैं, मतलब जिसमें इंद्रिय की कोई भूमिका न हो। आप जब कुछ स्मरण करते हैं तो उस समय में आँख से देख करके स्मरण नहीं करते हैं, बल्कि चिंतन करके स्मरण करते हैं। वह चिंतन क्या है, तो वह चिंतन होता है संस्कार से। अगर आप में संस्कार है तो आपको स्मरण होगा, संस्कार नहीं है तो आपको स्मरण नहीं होगा। तो ये दो तरह का स्मृति का लक्षण आपको के पास हो गया अब स्टॉक में। एक तो पुस्तक में जो है कि ज्ञात विषयम ज्ञानम स्मृति ही, माने जिस ज्ञान का विषय पहले से ज्ञात हो उसे हम, उस ज्ञान को स्मृति कहते हैं। और दूसरा लक्षण बच सिखाया संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही, जो केवल संस्कार से ही उत्पन्न हो जाए ज्ञान, उस ज्ञान को हम स्मृति कहते हैं। अब आगे कहते हैं कि अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, दो ही टाइप का ज्ञान होता है, एक तो स्मृति और एक अनुभव। तो जो स्मृति से अतिरिक्त ज्ञान है, अतिरिक्त माने अलावे, तो स्मृति से स्मृति के अलावे जो ज्ञान है, माने स्मृति को छोड़ करके बाकी जो ज्ञान है उसका नाम है अनुभव, उसे हम अनुभव कहते हैं। तो अनुभवो नाम स्मृति व्यतिरिक्तम ज्ञानम, इस तरह से आपने यथार्थ अनुभव प्रमाण है, जो यथार्थ और अनुभव ये दो शब्द आए हैं, इन दोनों के बारे में आपको जानकारी मिली कि ये यथार्थ इसमें लक्षण में क्यों डाला गया, अनुभव इसमें क्यों डाला गया, और स्मृति किसे कहते हैं और अनुभव किसे कहते हैं। इतना ज्ञान हो जाने के बाद अब जो है हम आगे ग्रंथ की पंक्ति अगर देखते हैं तो आगे ग्रंथ की पंक्ति में लिखा है किम पुनः करणम, ये प्रश्न किया गया। देखिए ऐसा है ना कि प्रश्न जो किया जाता है ना वो पूर्व संदर्भ के आधार पर प्रश्न होता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ देते हैं। जिसका प्रसंग आता रहता है ना उस प्रसंग के आधार पर प्रश्न किया जाता है। तो आप देखिए कि इससे इसके पहले का प्रश्न क्या था कि का पुनः प्रमा यस्याह करणम प्रमाणम, कि प्रमा क्या है, प्रमा किसे कहते हैं, और प्रमा का करण जो प्रमाण होता है ये आपने लक्षण किया था। तो पहले प्रमा के बारे में पूछा कि प्रमा क्या है, अब करण के बारे में पूछते हैं कि ये करण क्या होता है। जब प्रमा के बारे में पता चल जाएगा, करण के बारे में पता चल जाएगा, तो फिर प्रमा करणम प्रमाणम, प्रमाणम के बारे में भी पता चल जाएगा। इसलिए पहले संदर्भ जो है वह प्रमा का संदर्भ है और करण का संदर्भ है, क्योंकि प्रमाण के का लक्षण इन्होंने प्रमा करणम प्रमाणम बोला था, इसलिए पहले प्रमा को पूछा, अब यहाँ पर करण के बारे में प्रश्न कर रहे हैं कि किम पुनः करणम, कि ये करण क्या होता है। तो पहले मैं अपनी ओर से एक बात बता देता हूँ, फिर मैं पुस्तक की पंक्ति को बताऊँगा। ऐसा है कि कारण दो प्रकार का होता है, एक साधारण कारण और एक असाधारण कारण। असाधारण कारण भी कह सकते हैं और विशेष कारण भी कह सकते हैं। तो जो विशेष कारण होता है ना, असाधारण कारण होता है, उसी को कारण कहा जाता है। अब आपके मन में आएगा ये विशेष कारण क्या होता है, ये विशेषता उसकी क्या होती है। तो ऐसा एक उदाहरण के द्वारा आप समझिए कि आम का फल तोड़ना है पेड़ से, तो हमने 5 पत्थर जो है ना पेड़ फल तोड़ने के लिए मारे। पहला पत्थर लगा, फल नहीं गिरा, दूसरा मारा वो लगा नहीं गिरा, ऐसे ही तीसरे चौथे पत्थर के लगने पर भी नहीं गिरा, और पांचवें पत्थर लगने पर वह फल गिर गया। अब ये पांचों पत्थर जो थे ना वहाँ पर कारण है फल के गिरने में, क्योंकि पहला पत्थर लगने से टहनी जो है ना फल जिसमें लटका हुआ था वो थोड़ी कमज़ोर हुई, दूसरे लगने पर और भी कमज़ोर हुई, तीसरे लगने पर और भी कमज़ोर हुई, चौथे लगने पर उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हुई, और पांचवा लगने पर जो है ना वो कार्य हो गया, फल पतन रूपी जो कार्य है फल का गिरना वो हो गया। अब यहाँ पर कारण तो पांचों पत्थर हैं, लेकिन करण जो है वो पांचवा पत्थर है, क्योंकि पांचवें पत्थर लगने के बाद ही वह कार्य हुआ है। कौन सा कार्य? पत्र पतन रूपी कार्य, पत्ता के गिरने वाला जो कार्य संपन्न हुआ है। तो जिस कारण के तुरंत बाद कार्य उत्पन्न होता है वह जो कारण है वही करण कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, जिस कारण के तुरंत बाद में कार्य उत्पन्न होता है वह कारण जो माने अंतिम जो कारण है ना, वही करण कहलाता है। तो इस तरह से आपको समझाने के लिए मैंने बोला। और अब पुस्तक की पंक्ति में देखते हैं, पुस्तक में कहा गया कि साधक तमम करणम, पाणिनि का सूत्र भी है ना, करण संज्ञा जो होती है, कर्म संज्ञा होती है कर्तृ विपश्चित तमम कर्म, और करण संज्ञा होती है साधक तमम करणम। तो वही यहाँ पर इन्होंने बताया कि जो साधक तम होता है उसे करण कहते हैं। तो थोड़ा समझ लीजिए साधक तम क्या है। इसमें दो शब्द हैं, एक है साधक, दूसरा है तम। तम जो है ना वह प्रत्यय है, अतिशायने तमप, अतिशय अर्थ में तमप प्रत्यय होता है। तो तम का अर्थ, तम प्रत्यय का अर्थ हो गया यहाँ पर अतिशय, और साधक का अर्थ हो गया यहाँ पर कारण। तो साधक माने कारण, तम मतलब अतिशय। अब अतिशय को शुरू में ले आइए तो हो जाएगा अतिशयम साधकम करणम, साधक तमम करणम माने अतिशयम साधकम करणम, जो अतिशय साधक है वह करण है। जैसे मैंने पांच पत्थर वाला उदाहरण दिया, तो साधक सब हैं, चार पांचों पत्थर हैं, लेकिन अतिशय साधक पत्थर कौन है? पांचवा पत्थर है। तो वह जो साधक तम है वही करण कहलाता है। तो साधक तम मतलब अतिशयम कारणम करणम, जो कारण अतिशय कारण होता है, जिसको मैंने विशेष कारण बताया था वही करण कहलाता है। आगे फिर बताते हैं, स्वयं इसका अर्थ बताते हैं कि अतिशयितम साधक तमम प्रकृष्टम करणम इत्यर्थ है। माने साधक तमम का क्या अर्थ है? तो अतिशयितम साधक तमम प्रकृष्टम, माने प्रकृष्ट जो होता है वही साधक तम कहलाता है। अब आप अपनी इसको भाषा में बदल लीजिए कि कारण दो प्रकार का हो गया, एक हो गया सामान्य कारण, एक हो गया प्रकृष्ट कारण, माने वही विशेष कारण। जो प्रकृष्ट कारण होता है वही कारण कहलाता है। अतिशय माने अधिक, प्रकृष्ट मतलब भी अधिक, उसकी अधिकता क्या है? तो वही फिर से ध्यान में ले आइए कि जिस कारण के तुरंत बाद में कार्य की उत्पत्ति होती है वही प्रकृष्ट कारण कहलाता है, या अतिशयित कारण कहलाता है, या साधक तम कहलाता है, या करण कहलाता है। तो मैं समझता हूँ कि करण किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। एक और भी लक्षण मैं आपको अगले पाठ में बताऊंगा करण का क्या लक्षण होता है। आज का पाठ यहीं रखते हैं।